ओम शांति। रूस में बहुत समय पहले एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था इवान पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रयोग उसने किया, उसमें एक कुत्ते को उसने 15 दिन तक रोज रोटी खिलाई और जब भी कुत्ते को रोटी खिलाता था उस कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी और उसने उसी समय एक बेल रखी थी वहां पर जो बेल बजाता था कुत्ते को रोटी खिलाना और जैसे ही रोटी कुत्ते के सामने आती थी लार टपकती थी और उसी समय वो बेल बजाता था। तो 15 दिन तक उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये प्रयोग किया। 16वां दिन कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई गई परंतु खाली बेल बजाई गई और जैसे ही बेल बजी लार टपकने लगी क्योंकि बेल, लार और रोटी ये तीनों चीजें जुड़ गई। अभी रोटी है नहीं, खाली बेल है, परंतु केवल बेल बजाने के बाद में भी क्या होने लगा, लार गिरने टपकने लगी। इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रयोग को उसने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग और फिर इसके ऊपर बहुत और गहराई से प्रयोग हुए कि कैसे मनुष्य का मन कोई एक चीज से जुड़ जाता है और जैसे उस चीज से जुड़ता है बहुत सारी चीजें अंदर होने लगती है। अगर देखा जाए तो घंटी का और लार के टपकने का कोई संबंध नहीं, संबंध रोटी का है, परंतु रोटी के न होते हुए भी बेल बजते ही लार टपकना चालू हो गई। उसी तरह यदि हम मनुष्य के इतिहास को देखें तो सारे इतिहास में ऐसी ही कंडीशनिंग हुई है। जो भी बात व्यक्ति को बताई गई उसके साथ उसका संबंध जुड़ गया और संबंध जुड़ने के बाद वो सब वही करने लगा जो अन्यथा वो नहीं करता। एक ऐसा ही उदाहरण है जैसे कोई मंदिर के सामने से जा रहा है और जैसे ही मंदिर के सामने से जाता है तो क्या होता है, क्या करता है, हाथ जोड़ता है, झुकता है, कंडीशनिंग हो गया है मंदिर और उसका झुकना। जितने अलग अलग देवताओं के मंदिर से जाता है, अलग अलग देवताओं के सामने झुकता है और फिर उसके साथ अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा को जोड़ता है। अगर कहीं नहीं झुकता तो उसको क्या होता है, आत्मग्लानी होती है। अगर कहीं नहीं झुकता तो उसको लगता है मैंने कोई गलती कर दी। अगर वो नहीं झुकता है और कुछ अनर्थ और कुछ रॉन्ग या कुछ गलत हो जाए तो उसको लगता है ये न झुकने की वजह से हुआ है। तो पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल कंडीशनिंग का, वो अगर देखा जाए तो संपूर्ण मनुष्यता के जीवन में कहीं न कहीं पर समाया हुआ है और यही बातें भक्ति में भी हुई है। लंबे समय से भक्ति में ऐसी बहुत सारी धारणाएं बनी हैं, वो वास्तव में क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए भगवान की मान्यता कि वो सर्वव्यापी है और जैसे ही उसे सर्वव्यापी कहा गया उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें वहां गई। जो जो चीजें भगवान के विषय कही गई, विषय में कही गई, वो सारी कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हुई है। जो जो चीजें धर्म के विषय में कही गई वो सारी चीजें कंडीशनिंग हुई है। माइंड संयुक्त तो जुड़ गया है उन चीजों के साथ और उससे जरा भी हटना नहीं चाहता। वो जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के साथ जुड़ गया है व्यक्ति और उन परंपराओं से थोड़ा भी नहीं निकलना चाहता बाहर। तो चाहे भक्ति मार्ग, चाहे धर्म, चाहे जीवन, भक्ति मार्ग की बहुत सारी मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, परंपराएं, ये सारी जो चीजें हैं, इनका सारा संबंध कंडीशनिंग से है, क्योंकि वही वही चीज दोहराई गई तो अपने आप वैसा होने लगा, ऐसे आप वैसे ऐसी मान्यताएं आने लगी। जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने अपनी जीवन कहानी मेन कैंप में लिखा है, यदि कोई असत्य बार बार दोहराया जाए एक मनुष्य के सामने, समाज के सामने, जाति के सामने, देश के सामने, तो धीरे धीरे वो सत्य मानने लगता है। है असत्य, परंतु इतनी बार दोहराओ, इतनी बार दोहराओ, और यदि दोहराने वाले बड़े लोग हो, अमीर लोग हो, धार्मिक लोग हो, उच्च पद वाले हो, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है और धीरे धीरे व्यक्ति उस असत्य को भी सत्य मानने लगता है। तो ये दो चीजें, लास्ट संडे की जो मुरली थी, कुछ बातें चर्चा कहीं और कर ली थी, लास्ट पैराग्राफ जो था वो बचा था। वास्तव में वो जो लास्ट पैराग्राफ है वो उस मुरली का नहीं है, किसी और मुरली का है, 1683 की मुरली। उसमें बाबा ने सेवाओं के संबंध में कुछ नई बातें बताई है, सेवाओं के विषय में, प्रत्यक्षता के विषय में जो बातें बताई है वो कुछ अलग प्रकार की बातें हैं। इससे पहले कि हम उन बातों की चर्चा करें, ये जानना बहुत जरूरी है कि बाबा यहां जो कह रहे हैं कि तुम प्रत्यक्षता करो, इस ज्ञान को सिद्ध करो। किन के सामने सिद्ध करो, वो कौन से लोग हैं और उनकी कौन सी मान्यताएं हैं? उसमें से कुछ लोग हैं जो आस्तिक है, कुछ लोग हैं जो नास्तिक है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं भगवान है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको कहा जाता है अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक्स। उनकी मान्यता है भगवान हो या ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, होने से भी लेना देना नहीं है और ना होने से भी लेना देना नहीं। वो एक तीसरी कैटेगरी है जिसको कहा जाता है अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक्स। तो संसार इस प्रकार के लोगों से विभाजित है, नास्तिकों में भी धार्मिक भी है, अधार्मिक भी है, नास्तिकों में भी धार्मिक है, नास्तिकों में भी अधार्मिक भी है, कैटेगरीज बहुत सारी है। तो बाबा कह रहे इनके सामने ये जो ज्ञान है, जो भगवान सुना रहे हैं, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। और उनकी ढेर सारी मान्यताएं हैं, कोई भगवान के साकार रूप को मानता है, कोई निराकार रूप को मानता है, कोई कहता है वो सर्वव्यापी है, कोई कहता है वो द्वैतवाद को मानता है, कोई अद्वैतवाद को मानता है, कोई कहता है भगवान मनुष्य के हृदय में है, कोई कहता है हृदय में भी है, बाहर भी है और इस संसार से परे कहीं दूर भी है। इन सब लोगों के सामने ये सिद्ध करना कि ये भगवान का रूप है या वो अब आया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य का मन जो भी उसने सुना है वो सुन सुनकर कंडीशन हुआ है। जिस घर में उसका जन्म हुआ, जिस धर्म में उसका जन्म हुआ, वही बातें उसने सत्य मान रखी है। जिसका घर में क्रिश्चियन के रूप में हुआ है, उसने क्राइस्ट को ही सत्य माना है। इस्लाम जहां जन्म हुआ है, इस्लाम घर में, उसने इस्लाम की ही बातों को सत्य माना है। जिसका हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, हिंदू धर्म में भी किस संप्रदाय में धर्म जन्म हुआ है, उस अनुसार ही उसने वो मान्यताएं बनाई है। तो चाहे मान्यताएं, विश्वास, ये सब कुछ कंडीशनिंग रिफ्लेक्स है एक तरह का, कि उसी को वो मानता है और नया कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इस मुरली में या इस परिच्छेद में, इस पैराग्राफ में, जो कि दूसरी मुरली से लिया हुआ है 1683 की, उसमें बाबा ने सेवाओं के लिए ऐसी नौ बातें बताई है। है एक ही पैराग्राफ पर उसमें लगभग हम देखें तो भिन्न भिन्न इस ज्ञान की प्रत्यक्षता की अलग अलग नौ बातें हैं। सबसे पहली बात है प्लान। क्या करो, सेवाओं का प्लान बनाओ। और प्लान बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लेन बुद्धि चाहिए। प्लेन बुद्धि किसे कहेंगे? प्लेन इंटेलेक्ट। किस इंटेलेक्ट को प्लेन इंटेलेक्ट कहेंगे? और क्यों बाबा कह रहे हैं कि प्लान बनाने के लिए प्लेन इंटेलेक्ट चाहिए, जबकि थोड़ा विरोधाभास है। प्लान बनाना अर्थात बहुत सारी चीजें बुद्धि में आएगी, बहुत सारे संकल्प बुद्धि में आएंगे, बहुत सारे विचार बुद्धि में आएंगे, बहुत सारे ओपिनियन बुद्धि में आएंगे। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, मीटिंग्स आती है, हजारों बातें बुद्धि में आती है। जब भी किसी को कहो प्लान बनाओ तो वो सोचना चालू करता है। संकल्पों की उधेड़ बूंद, संकल्प मन में भरने लगते हैं, ढेर सारे संकल्प। और भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें सेवाओं का प्लान बनाना है, उसके लिए बुद्धि क्या चाहिए? प्लेन। प्लेन अर्थात खाली, साफ। प्लेन अर्थात जटिल नहीं। प्लेन अर्थात सहज। प्लेन अर्थात सुलभ। प्लेन अर्थात सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड। प्लेन अर्थात जमीन जो होती है, समतल जमीन जो होती है, ओबड़ खाबड़ जमीन नहीं। जो जमीन समतल है उसको फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेट्यू, उसको प्लेन कहा जाता है। वो एक अर्थ है प्लेन का। पर बाबा जिस अर्थों से प्रयोग यूज करते हैं वो है सिंपल, सहज। तो जब कोई भी प्लान बनाना है, चाहे सेवाओं का, चाहे पुरुषार्थ का, चाहे योग का, या किसी भी तरह का, पहली चीज जो चाहिए वो है प्लेन इंटेलेक्ट। मन में जो कचरा भरा हुआ है उस कचरे से उसको बाहर कर देना। प्लान बनाने के लिए बहुत ज्यादा संकल्पों की आवश्यकता नहीं है। प्लान बनाने के लिए कम संकल्पों की या नो माइंड की जो स्टेज है उसकी आवश्यकता है, और वो आएगी योग के अभ्यास से। क्योंकि इस अवस्था में ही बुद्धि एकाग्र होती है, नहीं तो बुद्धि स्कैटर्ड इंटेलेक्ट, बिखरी हुई होती है। और जो बिखरा हुआ इंटेलेक्ट है वो कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता है, और जहां एकाग्रता नहीं वहां पर नए प्लानिंग्स भी नहीं आते। इसलिए सेवाओं के लिए इस ज्ञान को यदि सिद्ध करना है, किन लोगों के सामने? जो कंडीशनड हो चुके हैं, जिनकी मान्यताएं इतनी गहरी हो गई है कि उनको चेंज करना, परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। उन लोगों के सामने यदि इस ज्ञान को प्रकट करना है, सिद्ध करना है, तो सबसे पहले बुद्धि को प्लेन बनाना पड़ेगा। इसी प्लेन बुद्धि में नई टचिंग्स होगी, इसी प्लेन बुद्धि में नई प्लानिंग्स आएगी, इसी प्लेन बुद्धि में नए संकल्प आएंगे, इसी प्लेन बुद्धि में कुछ तो इन्वेंटिव आएगा, कुछ तो रचनात्मक आएगा। इसी प्लेन बुद्धि में ये समझ में आएगा कि इन लोगों को किस ढंग से, किस तरीके से, किस विधि से, किस टेक्निक से, किन शब्दों में, किस भाषण में समझाया जाए, बताया जाए। तो जब भी कोई प्लानिंग करना हो तो क्या करना चाहिए? प्लेन इंटेलेक्ट, सीधा सूक्ष्म वतन, और सूक्ष्म वतन से फिर परम धाम, बीज रूप स्टेज, उस बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाना, और प्लानिंग के विषय में नहीं सोचना, योग करना चालू कर देना, किरणें लेना चालू कर देना। अपने आप धीरे धीरे जैसे ही उस स्थिति से नीचे आएंगे योग करते, अपने आप पता चलेगा क्या प्लानिंग करनी है सेवा की। क्योंकि कोई कोई चीजें खाली सेवा, मतलब केवल सेवा की ही प्लानिंग नहीं, जीवन की प्लानिंग, करियर की प्लानिंग, लाइफ की प्लानिंग, क्या प्लानिंग करनी है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, क्या जॉब करना है, क्या जॉब नहीं करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, क्या पुरुषार्थ नहीं करना है, फ्यूचर की प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है प्लेन इंटेलेक्ट, मन को सरल कर देना, जटिलता से बाहर निकालना, रुक जाना, खाली कर देना उसको हर चीज से और देखना अब क्या होता है। तो ये सेवाओं के लिए सबसे पहली बात है प्लेन इंटेलेक्ट। दूसरी पॉइंट है सेकंड, ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, रिवील नॉलेज। बाबा ने कहा ज्ञान को क्या करो, प्रत्यक्ष करो, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। ये ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे होगा, उन लोगों के सामने जिनकी बहुत, जो कट्टरवादी है, जो रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं, जिनकी मान्यता इतनी गहरी है कि और किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते। बात तो शांति की करते हैं पर है अशांत, जो अशांत है वो भी शांति की बातें करते हैं, चारों ओर शांति की बातें चालू है परंतु शांति किसी के पास भी नहीं है। ऐसे लोगों के सामने इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। बाबा ने कहा ज्ञान का बीज डालो, बाबा ने कहा अथॉरिटी से ज्ञान को सुनाओ, डर के नहीं, अथॉरिटी से। प्रत्यक्ष करने की विधि है बीज को डालना, प्रत्यक्ष करने की विधि है अथॉरिटी से सुनाना, डर के नहीं कि ये लोग क्या सोचेंगे। वायुमंडल देखकर नहीं सुनाओ, अपनी अथॉरिटी से सुनाओ। ये नहीं कि सामने बहुत कोई वीआईपी बैठा हुआ है तो उसको नहीं सुनाएंगे, ये लोगों को बुरा लगेगा। बाबा ने कहा ये कब तक करोगे, ये बहुत कर लिया, बहुत गुप्त रहे, अब प्रत्यक्ष होने का समय है। इसके लिए फुल पावर से सुनाना, चाहे सामने बैठे वाला जो व्यक्ति है लौकिक रीति से बहुत बड़ा है। सोचो यदि कोई, यदि प्रेसिडेंट ही आके बैठ जाए और हमको कहा जाए कि ज्ञान को सुनाओ, तो कैसे करेंगे? या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर आ जाए, और जो कोई भी धार्मिक नेता आ जाए, तीनों सत्ताओं में से कोई भी एक आ जाए, धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान की सत्ता, बहुत बड़ा साइंटिस्ट आ जाए जो जिसने बहुत सारी खोजें की है, और उसके सामने हमें ज्ञान सुनाना है, तो क्या हम निर्भय होकर सुना पाएंगे या डरेंगे? या कोई शंकराचार्य, इमाम, तीर्थंकर आकर बैठ जाए तो निर्भय होकर सुना पाएंगे? या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन? तीनों में से सबसे मुश्किल किसके सामने है? तीनों में से सबसे मुश्किल किसके सामने है? धर्म सत्ता, धर्म का जितना अहंकार है उतना राजनीति और विज्ञान का भी नहीं है। ऐसा कभी सुना आज तक? आस्तिकों के वजह से, नास्तिकों के वजह से मंदिर जले, युद्ध हुए, नास्तिकों ने कम युद्ध किए, सबसे ज्यादा युद्ध किसने किए? आस्तिकों ने ही किए। धर्म के नाम पर मस्जिद को तोड़ दिया, मंदिरों को जला दिया, ये कार्य ज्यादा आस्तिकों ने किए, उनका अहंकार भी बड़ा होता है। तो चाहे कोई भी हो, तुम्हें ज्ञान का बीज बोना है, अथॉरिटी से बोलना है, डरना नहीं है, निर्भय होकर सुनाना है। इसके लिए एकदम नहीं होगा, ये रोज अमृत वेले ये अभ्यास करना है। तीन सत्ताओं को सकाश, एक एक सत्ताओं को इमर्ज करना, जो बाकी सकाश रोज देते हैं, ये बहुत जरूरी काम है जो रहा हुआ है। धर्म सत्ता को इमर्ज करना, धर्म सत्ता में किसको देखेंगे? जितने भी धार्मिक लोग हैं संसार के, पंडित, पुजारी, प्रिस्ट, पोप, ये सारे भक्त, इन सब को इमर्ज करके उन्हें परमात्मा परिचय देना, उन्हें भगवान का ज्ञान सुनाना, अमृत वेले सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म रीति से। दूसरा वैज्ञानिक, इन सारे वैज्ञानिकों को इमर्ज करना रोज, रोज ये अभ्यास करेंगे तो एक दिन जब वो अपने आप सामने आएंगे तो डरेंगे नहीं, नहीं तो हिचकिचाएंगे, कैसे इनको ज्ञान सुनाए, इतने बड़े लोग, डरेंगे थोड़ा। तो तीसरा धर्म सत्ता, राज सत्ता। राज सत्ता में किसको देखेंगे आंखों के सामने? जो बड़े बड़े नेता है, इतनी सारी पार्टियां जो है, महागठबंधन इतनी सारी जो पार्टियां है, उनको सबको देखना, उनको भी और उनके अनुयायियों को भी। अनुयायी तो धर्म में कहा जाता है, यहां कुछ और कहा जाता है, चाटुकार तो वो सारे जो है उनके सारे, उन सबको देखना, उन सबको निर्भयता से अमृत वेला ज्ञान सुनाना, सकाश देना। तो दूसरा है ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, ये दूसरी विधि है। सेवा के नौ सूत्र, निर्भयता से सुनाना, अथॉरिटी से सुनाना, डरना नहीं बिल्कुल भी। तीसरा है, तो इसमें अमृत वेला ये प्रयोग रोज सबको करना है, तीन सत्ताओं को इमर्ज करना, इधर इधर इधर, एक एक को सकाश देना, ज्ञान देना। नहीं, तीन अलग अलग है, तो तीनों को अलग अलग सकाश देनी है, ताकि धर्म सत्ता में भी एक रस्ता आए, विज्ञान सत्ता में भी जो बुद्धि उनकी बहुत ज्यादा स्थूल में जा रही है वो सूक्ष्म की तरफ आए। आइंस्टाइन ने लिखा एक जगह, द साइंस ऑफ मेटाफिजिक्स, द स्टडी ऑफ फिजिक्स टेक्स मी टूवर्ड्स मेटाफिजिक्स। जो फिजिक्स है, भौतिकी, इसका अध्ययन करते करते मैं मेटाफिजिक्स, अध्यात्म की तरफ आने लगता हूं। ये स्टडी मुझे उस स्टडी की ओर ले जाती है। जैसे ही स्थूल के सूक्ष्म में जाएंगे, स्थूल की गहराई में जाएंगे, सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। तो दूसरा है ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, तीसरा है टॉपिक्स। टॉपिक्स में क्या बोला बाबा ने? अब तक तुमने जो टॉपिक्स पर बोला वो टॉपिक्स थे जो उनके इंटरेस्ट के थे। इतने सालों से जो सुना रहे हो, सेमिनार किए, मेले किए, कॉन्फ्रेंसेस की, वो जो टॉपिक्स थे वो उनके हिसाब से थे, ताकि उनको इंटरेस्ट आए। परंतु सुनाओ ही ऐसे कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही आए। ये थोड़ी अलग बात बाबा ने यहां कही कि आए ही ऐसे जो इंटरेस्टेड है, मतलब टॉपिक्स चाहे कुछ भी हो, टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है, वो वैसे ही आए, उनको लगे कि यहां कुछ है। अभी तो टॉपिक देखा, कोई अच्छा सा टॉपिक दिखा, इसलिए टॉपिक के आकर्षण में आए। पर टॉपिक का आकर्षण ना हो, आकर्षण चेतना का हो, स्थूल का नहीं, आकर्षण अध्यात्म का हो, आकर्षण संस्था का हो, आकर्षण इस यज्ञ का हो, आकर्षण प्यूरिटी का हो। फिर चाहे जो भी आप सुनाओ, अच्छा सुनाओ नहीं सुनाओ, भाषा अच्छी हो, व्याकरण में त्रुटियां हो, चलेगा। हिंदी आती नहीं, चलेगा, वो तो देखेंगे ही नहीं, वो खाली आके बैठेंगे और प्रभावित होंगे, उसका भाषण से, व्याकरण से कोई लेना देना नहीं। कौन सुना रहा है ये भी नहीं पूछेंगे, जो स्पीकर है उसकी डिग्री क्या है, जो कोई माता सुना रहे हैं, कोई भी सुना रहा हो, आके चुपचाप बैठ जाएंगे, शांति से सुनेंगे। जो भी आप सुनाएंगे वो राइट होगा। तो आकर्षण टॉपिक का नहीं, अब तक उनके हिसाब से टॉपिक निकाले, अब जो मैटर है उस पर फोकस करो, उससे आकर्षित होंगे वो। नीचे शांतिवन में एक बार बहुत बड़े कलेक्टर आए थे, तो उनको, वो मनमोहिनी में थे या कहीं और थे दूर, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो हमारे, वो नीचे दत्ता भाई है ना, वो अपनी साइकिल पे बिठा के उनको लेके गए थे सामने वाले दंडे पर, और वो भी बहुत खुशी से गए, उनको भी बड़ी खुशी हुई। गाड़ी थी नहीं तो क्या, वो कलेक्टर साहब थे, दंडे पे बिठाए और लेके गए, और वो बहुत खुश हो गए। तो उनको हर बात यहां अच्छी लगेगी, हर एक बात अच्छी लगेगी। हमको याद है जब हमारे अंकल यहां आए थे, तो वो पुलिस कमिश्नर है, तो यहां तीन दिन घूमने आए थे, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो हमको तो लगा कि ये तो साधारण सी है, पर उनके लिए असाधारण थी वो बातें। एक एक चीज देखते थे, एक एक चीज में उनको आश्चर्य लगता था। यहां खड़े थे तो वहां पर वो जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो आके गाड़ी साफ कर रहा था ठीक से। तो उन्होंने कहा इस ड्राइवर को किसी ने कहा भी नहीं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बताना पड़ता है 10 बार, ये करो वो करो ये करो वैसा करो, तब भी लोग नहीं करते। यहां किसी को कुछ भी नहीं बताना पड़ता है, अपने आप सारा कुछ करते हैं। उन्होंने लेक्चर और भाषण तो किसी का भी नहीं सुना होगा, पर यही सारी चीजें देखते रहे, कौन क्या सफाई कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, यहां बॉस कौन है, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है। उन्होंने कहा यहां कोई किसी को भी ऑर्डर नहीं दे रहा है, अपने आप ही सब हो रहा है। तो टॉपिक से आकर्षण ना हो खाली, अब तक उनके हिसाब से टॉपिक निकाले, अब मैटर। चौथा है परमात्मा बॉम, क्या करो, परमात्मा बॉम लगाओ अपने स्टेज के नीचे जहां बैठते हो स्टेज के नीचे क्या लगाना है, परमात्मा बॉम तो बॉम क्या करता है, विस्फोट होता है बॉम, एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन के इफेक्ट्स क्या क्या है, जब बॉम फटता है तो क्या होता है घायल हो जाते हैं, चोट लगती है, थर्मल रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, गामा रेज, परिवर्तन, बहुत सारी, घायल होके कोई कोई मर जाते हैं, नजदीक वाले मर जाते हैं, कुछ घायल होते हैं, पर्यावरण में पूरा फैल जाता है वो, उसके रेज, उसके रेडिएशंस, और उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं बहुत समय तक। हिरोशिमा नागासाकी बाव बहुत समय तक लोगों को कैंसर होते रहे, मतलब आज अगर बॉम्ब लगे तो दूर तक भी सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद में भी बीमारियां चालू है। हाँ, बॉम्ब कितना शक्तिशाली है। तो बाबा ने कहा परमात्मा बॉम्ब लगाओ, तो इस बॉम्ब लगाने के बाद में भी क्या होना चाहिए, आत्माएं घायल, किससे घायल करेंगे, परमात्मा प्रेम से घायल हो जाए, ज्ञान से घायल हो जाए, ये काम करना है, परमात्मा बॉम्ब लगाना, घायल करना, और कुछ मर जाए तो बहुत अच्छा। किससे मरना, पुरानी दुनिया से मर जाए, ऐसा वैराग आ जाए कि नवजन्म हो जाए, मर्जीवा जन्म हो जाए, डाइंग अलाइव तो ऐसा परमात्मा बॉम्ब लगाओ कि जो एकदम आसपास वाले हैं, मतलब जो सुनने वाले होंगे, वो तो सीधा मर जाए, जो थोड़े दूर है घायल हो जाए, और कुछ कुछ बॉम्ब ऐसे होते हैं कि जो बहुत दूर पर घरों की जो खिड़कियां है वो कांच हिलते हैं, अंदर कुछ नहीं होता है पर कांच हिलने लगते हैं, कांच भी टूट भी जाते हैं। तो ऐसा बॉम्ब गिराना है कहीं पर कि उसका बहुत दूर दूर तक परिणाम हो, हाँ, कान के पर्दे हिल जाए, ऐसा काम करना है, ऐसा परमात्मा बॉम्ब लगाओ। ऐसा परमात्मा बॉम्ब लगाने के लिए बॉम्ब कैसा चाहिए, पावरफुल चाहिए, अगर कम पावरफुल होगा तो गिरेगा और पता भी नहीं चलेगा, फुस सूडो बॉम्ब फेक, हाँ कोई कोई बॉम्ब तो गिरता है और फूटता ही नहीं तो बॉम्ब गिराना है, परमात्मा बॉम्ब गिराना है, यह है चौथा कार्य। पांचवा, बाबा ने कहा हलचल हलचल मचाओ, हलचल मचाओ। इसमें दो बातें बताई, स्नेह से और अथॉरिटी से ज्ञान को सुनाओ। तीर जब लगाते हो तो साथ साथ क्या करो, मसाज मालिश भी करो, परंतु हलचल मचाओ। ऐसा नहीं कि वो समझे कि यहां वही है, उनको लगे ये कुछ और है, मन में हलचल हो जाए, उनको लगे कि अब तक हम जो सुनते आ रहे थे, अब तक जो हमारी मान्यताएं थी, और ये जो सुना ये एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। ऐसा नहीं कि चलो इधर भी गए, वो संस्था, चार संस्थाओं में जाके आए, चलो ब्रह्मा कुमारी भी जाते, यहां पर भी देख लिया, हाँ यहां पर भी बहुत अच्छा है, ये लोग भी बहुत अच्छे, अच्छा ज्ञान सुनाते, ये हलचल नहीं है। हलचल मतलब डिस्टर्बेंस हो, मेंटल डिस्टर्बेंस की धक्का लगे, अरे ये तो कुछ और ही है, उनको ऐसा लगे कि अब तक सारी संस्थाएं एक तरफ और ये जो संस्था है ये एक तरफ है, अब तक का जो ज्ञान सुना है वो एक तरफ और ये जो ज्ञान सुना रहे वो एकदम भिन्न है, यह ऐसा कॉन्सेप्ट हमने आत्मा के विषय में आज तक नहीं सुना था, परमात्मा के विषय में नहीं सुना था। यह जो सृष्टि चक्र बता रहे हैं, आज तक कहीं हमने ऐसा नहीं सुना। हलचल हो जाए, मन में हलचल। तो ये पांचवा सूत्र है, हलचल मचाओ। उसके लिए अथॉरिटी से, फिर से वही बात कही, स्नेह, अथॉरिटी के साथ स्नेह को जोड़ो, अथॉरिटी के साथ स्नेह से ज्ञान सुनाओ। तीर तो लगाओ परंतु साथ साथ मालिश भी करो। तो तीर तो लगाना है, तीर लगाने से क्या होता है? तीर जब लगता है तो व्यक्ति क्या होता है? घायल। तीर लगता है तो क्या होता है? खून निकलता है। तीर लगता है तो क्या होता है? दर्द होता है। तीर लगता है तो क्या होता है? क्या होता है? जख्म हो जाती है, छेद हो जाता है, एक एंट्री वुंड हो जाता है। अगर ज्यादा शक्तिशाली तीर हो तो बाहर से निकलता है, एग्जिट वुंड, इधर से गया उधर से निकला, बहुत पावरफुल तीर हो तो। तो ऐसा परमात्मा प्रेम का जख्म, वुंड ऑफ गॉड्स लव, डिवाइन लव का घाव हर एक दिल पर हो जाए, ऐसा तीर लगाओ। पर ऐसा भी नहीं, और साथ साथ मालिश भी करो, ड्रेसिंग पर ड्रेसिंग ऐसी करना कि वो घाव कभी भरे ना, वो घाव अनभरा ही रह जाए, अनहीलिंग, हीलिंग हो ही ना, वो घाव में से खून बहता ही रहे। थोड़ी थोड़ी ड्रेसिंग करते जाना आशीष भाई, ठीक है, ऊपर ऊपर की तो क्या करो? हाँ, हलचल मचाओ। पांचवा, छठवा बताया, इस ज्ञान को सिद्ध करो, प्रूव द नॉलेज। इस ज्ञान को क्या करो? सिद्ध करो। यहां बाबा ने उदाहरण दिया, कब तक छुपा के रहोगे? ब्रह्मा का उदाहरण दिया, जब ब्रह्मा बाबा थे तो जो भी भाषण दिया सीधा बोला। उस समय भी ऐसे लोग थे जो चित्र को फाड़ने वाले थे, परंतु चित्र को फाड़ने वाले होने के बाद में भी चित्र को रख तोड़ी दिया, फिर भी ज्ञान सुनाना चालू था। और जिनको सुनाया वहां झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे बाबा ने मुरली में कहा है ब्रह्मा के विषय में। तो अपने भाषण की शैली को बदलो, जैसे उनके हिसाब से अब तक भाषण करते आए कि उनको बुरा ना लगे, अच्छा लगे, उनके हिसाब से कहो। यदि कोई आके भाषण पहले आपसे, आपके पहले आकर भाषण किया और उसने कहा जय श्री कृष्ण या जय श्री राम, और वो अपने रीति से सारा कुछ बता रहा है, भगवान कैसे सर्वव्यापी है और ये सारी चीजें, तो तुम हिचकिचाता नहीं, जो कहना है सीधा कह देना। अभी तक अगर कोई आ रहा है और वो कह रहा है शिव और शंकर जी मुझ पर रहम करे, वो इस तरह से सारा कुछ कह रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भी हम भी वैसा ही करना चालू कर रहे। अथॉरिटी हो ज्ञान की, जो कहना है बस वही कह देना। तो प्रूफ, सिद्ध करो इस ज्ञान को। इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग आते हैं, सुनते हैं, यहां से जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ भगवान सर्वव्यापी है, बहुत अच्छा ज्ञान सुना है। हाँ, 7 दिन का कोर्स करके यही सीखते हैं। तो इस ज्ञान को प्रूफ करना, और दूसरा इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात कही, यथार्थ ज्ञान। लोगों को ये लगे यही यथार्थ ज्ञान है, इसी से गति सदगति होगी। खाली शिविर में आ जाए और फिर शक्तिशाली नहीं बनते, वो तो तुम्हारा प्रभाव है वहां पर। और जिसको भी बाबा ने कहा आराम मिल जाए, खातरी मिल जाए, स्नेह मिल जाए, तो खुश तो होंगे ही, तो खुश होके जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ज्ञान खुश सुनकर खुश होकर गए, वो तुम्हारा खाली प्रभाव है, शक्तिशाली बनकर नहीं गए, शक्ति स्वरूप बनकर जाए, शक्तिशाली बनकर गए नहीं है वो। ये लगे कि बस यही यथार्थ ज्ञान है, ये वास्तविक सेवा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम कर लिया और सबने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो कहेंगे इतना अच्छा भोजन मिल गया, खातरी हो गई, प्यार मिल गया, स्टेज पे बुला दिया, इस चीफ गेस्ट ही बना दिया उसको, और चीफ गेस्ट बनने के बाद वो बुराई थोड़ी करेगा उसको तो वापस आना है चीफ गेस्ट बनकर, उसको तो लगता है ना मुझे बुलाए, मुझे बुलाए, गिफ्ट मिलती है उसको, टोली मिल जाती है उसको, मान मिल जाता है। हमको याद है एक बार ज्ञान सरोवर में एक नेताजी आए थे, उनका इतना सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ, और जब उनके भाषण देने की बारी आई तो अध्यात्म तीन चार लाइन कही कुछ और फिर अपनी पार्टी के विषय में सब कुछ बताना चालू कर दिया, जैसे वो ये भूल ही गए कि सभा आध्यात्मिक है, कैसे मुझे वोट दो, वो प्रचार का ही उसने उसको ये बना दिया उसको लगा बस अभी मैं प्रचार करके ही छोड़ूंगा। 20-15 मिनट वो खाली अपनी पार्टी के विषय में बताता रहा। हाँ वो तो छाया होता है, परंतु वही पूरी बातें, वही पूरी बातें, और कैसे दूसरी पार्टियों की निंदा और अपनी पार्टियों की पार्टी की तारीफ वो यही करता रहा। तो उनको लगे ये यथार्थ ज्ञान है, ऐसा नहीं कि यहाँ रामायण सुन ली पूरी और उसके बाद में सीता कौन, तो रावण की बेटी, बस यही उनके हाथ में रह गया। यथार्थ ज्ञान है एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति स्वरूप, आठवां शक्ति स्वरूप। बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से निकलने वाला एक एक बोल क्या करे, शक्ति के मुख से निकलने वाला एक एक बोल हृदय को परिवर्तन कर दे, उनकी बुद्धि में जो ना है वो हा हो जाए, अंदर ही अंदर उनको लगे कि हमें ये कुछ भी पता नहीं, अब उनका अज्ञान उनके सामने स्पष्ट हो जाए। हमको याद है बहुत समय पहले हॉस्पिटल में एक माता पर जो इंग्लिश हिंदी की प्रोफेसर थी, हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर जो एमए और वो सब जो होता है उसमें हिंदी पढ़ाते थे, तो वो अभी अभी कोर्स हुआ था, तो किसी ने उनको कहा था कि आप आज मुरली आप सुनाओ, वहां जो मुरली चलती थी बाबा के कमरे में, तो उनको कहा आप मुरली सुनाओ, क्योंकि हिंदी तो उनको आती है तो मुरली सुनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा नहीं ये मैं नहीं कर सकती, वो उधर बड़े बड़े विद्यार्थियों को सिखाती है हिंदी, पर ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, इसकी वो जो पावर है अथॉरिटी जो चाहिए वो मुझ में अभी तक नहीं है, इसके लिए मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाऊंगी, उसने ये कहा था। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली बनकर आत्माएं जाए, शक्ति स्वरूप बनकर यहां से जाए, केवल प्रभावित होकर नहीं जाए, प्रभावित तो सभी होंगे यहां की, इतना सबसे पहले तो यहां के हॉल देखकर ही प्रभावित हो जाते, यहां की क्लीनलीनेस देखकर ही प्रभावित हो जाते, यहां की जो मैनेजमेंट है वो देखकर ही प्रभावित हो जाते, यहां की हाईटेक सारा कुछ जो अभी बना है वो तो है ही, प्यार है, ट्रांसपोर्ट, हर चीज यहां की ऐसी है कि वो देखकर प्रभावित हो जाते, पर वो प्रभाव तब तक रहता है जब तक यहां है, यहां से उधर गए थोड़ा समय चलेगा फिर कम हो जाता है, तो वो शक्ति स्वरूप बन जाए। तो बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप अर्थात तुम्हारा बोल एक एक बोल हृदय परिवर्तन कर दे, ना जो है वो हां में परिवर्तन कर दे, खाली ऊपर ऊपर का परिवर्तन नहीं, बदलाव अंदर से, फाउंडेशन हिल जाए उनका, ये करो। तो ये है आठवीं पॉइंट। और लास्ट ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल, फॉर्म में जो प्रश्नावली है वो कैसी थी, तीर का काम करती थी, ऐसी प्रश्नावली उनसे भराओ, केवल बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ कर प्रश्नावली के उत्तर दे कि हिल जाए, उसमें प्रश्न ही ऐसे खतरनाक प्रश्न हो, जैसे गीता का भगवान कौन, शिव या कृष्ण, भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है, हां या ना में उत्तर दो, तुम्हारे कितने बाप है इस तरह से पावरफुल प्रश्नावली हो, तीर का जो काम करे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने वो प्रश्नावली बनाई थी वैसी प्रश्नावली बनाओ, उसी रीति से अभी इस ज्ञान को सिद्ध करो। तो ये ऐसी 9 पॉइंट्स उस छोटे से पैराग्राफ में, लास्ट संडे की जो मुरली है और वो जो पैराग्राफ है लिया हुआ है किसी और मुरली से, 1683 की। तो ये बातें करनी है, जो आत्माएं थोड़ी हिल जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो अब तक जो हमने किया है ये गलत है, जैसे किसी को हमने समझाया और वो जैसे हनुमान जी का मंदिर आता है नीचे झुकता है, शंकर जी का मंदिर आता है वहां झुकता है, और आगे किसी का मंदिर आता है वहां झुकता है, हर एक जगह झुकता है, उसको डर है कि कहीं कोई इनमें से नाराज ना हो जाए, और नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा, तो इस डर से भी उनको मुक्त करना है कि ये सारा जो है अंधविश्वास, इससे बाहर निकलना है। तो सबसे पहले बताया, प्लान करो क्या सेवा करनी है, प्लेन कर दो बुद्धि को तो प्लानिंग अपने आप आएगी। दूसरा बताया, ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, अथॉरिटी से बोलो, बीज डाल दो ज्ञान का। तीसरा बताया टॉपिक्स, टॉपिक्स किससे ज्यादा ये ना हो, वो मैटर जो हो वो मैटर शक्तिशाली हो। नेक्स्ट बताया बॉम्ब, वो बॉम्ब लगाना है, जो भी प्रोग्राम सेंटरों पर किए जाते हैं ऐसे सोचो ये एक बॉम्ब है जिससे आत्माएं घायल होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया पांचवा, हलचल, हलचल मचाओ, आत्माएं हलचल में आ जाए, स्नेह अथॉरिटी दोनों हो, तीर और मालिश दोनों साथ साथ हो। छठवा बताया इस ज्ञान को सिद्ध करो, जैसे ब्रह्मा बाप के समय का उदाहरण दिया, वो डरे नहीं, सिद्ध किया, प्रूव किया, अथॉरिटी से प्रूव किया, वैसे तुम भी सिद्ध करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। सेवेंथ बताया यथार्थ ज्ञान यही है, उनको लगे दिस इज द ओनली ट्रू नॉलेज, इसके ऊपर संसार में और कोई नॉलेज नहीं है, यही एकमात्र यथार्थ ज्ञान है। इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी से उसको सुनाना, यदि सोचो सुनाने वाला खुद ही डिप्रेस्ड है तो कैसे सुनाएगा, सुनाने वाला खुद ही स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और वो शांति के ऊपर बोल रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी नहीं पड़ सकता है। सुनाने वाले के जीवन में खुद असंतोष है और दूसरों को संतोष सुखाए, कैसे होगा प्रभाव। हमें अपने जीवन से संपूर्ण संतोष, अपने जॉब से, अपने कर्म से, अपनी सेवा से, अपने लोगों से, संबंधों से, इस परिवार से, यदि संतोष का भाव है तो ही हम उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने एक जगह बहुत सुंदर चीज लिखी है, उसने लिखा है भगवान से कि हे प्रभु, मैं तुझे स्वीकार करता हूं पर तेरा ये संसार मुझे स्वीकार नहीं है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, आई बिलीव इन यू, बट तेरा ये जो संसार है मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बाद में उसने लिखा कि मैं फिर गहराई से सोचता हूं, यदि मुझे उसका संसार स्वीकार नहीं है तो ये जो मैं कह रहा हूं कि तू मुझे स्वीकार है, इसमें भी धोखा हो रहा है अपने साथ, क्योंकि ये उसका संसार, अगर उसका संसार मुझे स्वीकार नहीं है तो वो भी शायद स्वीकार नहीं है, तो ये तो मैं स्वयं के साथ छल कर रहा हूं। तो जब स्वयं के अंदर इस परिवार को भी हमने स्वीकार किया, हर एक आत्मा को भी हमने स्वीकार किया, हर एक के पार्ट को स्वीकार किया, और हमारे अंदर संतोष का भाव है, और फिर हम ज्ञान सुना रहे हैं, तो प्रभाव होगा, नहीं तो हमारे अंदर ही अतृप्ति है, असंतोष है, दुख है, जमघटों की पीड़ा अभी अनुभव हो रही है दुख की, कल कहा ना, तो कैसे दूसरों को सुख स्वरूप का अनुभव हम करा पाएंगे। नेक्स्ट बताया सातवा, आठवा बताया शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन के सुनाना है कि मैं शक्ति हूं, एक एक शब्द क्या है, शक्तिशाली महावाक्य है, हमारे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द पावरफुल हो, हृदय को सीधा परिवर्तन कर दे, चीर दे। और लास्ट ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, वो जो प्रश्नावली थी, तीर वाली प्रश्नावली थी, उसमें तीर थे, ऐसी एक प्रश्नावली तैयार करनी है, सेंटरों पर बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर्स कराना, उसके बाद में ऐसे ही फॉर्म नहीं भरा देना, सोच समझ कर यथार्थ, तो पहले उसको समझाओ, उसके बाद में उससे फॉर्म भराओ, तब पता चलेगा उसको कितना समझा, ऐसे फॉर्म हो कि जिसमें पावरफुल प्रश्न हो कुछ, और फिर उसको भरने दो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे समझेंगे कि इसको कितना समझ में आया है, फिर अपनी फिर से प्लेन बुद्धि होकर नया प्लान बनाना उसके लिए। तो ऐसे 9 सूत्र है सेवा के। ओम शांति।